प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 20 फरवरी 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं नितिश तिवारी, आप बहराइच उत्तर प्रदेश से हैं, और सचिन सिंह, आप भी बहराइच उत्तर प्रदेश से हैं। धनंजय यादव, आप आजमगढ़ से हैं, और भारत गहलोत, आप जोधपुर राजस्थान से हैं। तो नितिश, सचिन, धनंजय और भारत, आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों मैं इस अवसर पर आज खासकर अपने उन पूर्व स्टूडेंट्स जो हमारी क्लासेज में इससे पहले आ चुके हैं उनके प्रति पूरी एकेडमी की ओर से बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। इनफैक्ट सच पूछिए तो आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और खासकर इस बात के लिए कि अब जबकि क्लासेज के दिन नजदीक आते जा रहे हैं मेल के जरिए मुझे अपने पूर्व विद्यार्थियों के बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं जिसके तहत वो अपने क्लासेस के दिनों को याद कर रहे हैं, बड़ी भावुकता के साथ उनका स्मरण कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप सब जो नए स्टूडेंट आने वाले हैं उनके लिए वो मैसेजेस भी दे रहे हैं। उनके मैसेजेस का केंद्र ये है कि उन्हें इन 15 दिनों को मिस नहीं करना चाहिए, इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए, अन्यथा बाद में उनको लगेगा कि देखिए उन्होंने इतना अच्छा अवसर मिस कर दिया। तो मित्रों इसके बारे में ढेर सारे मेल आने शुरू हो गए हैं, मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा कि उनके मेल मैं यहां सीधे सीधे पढ़कर सुनाने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि उससे वक्त उसमें लग जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों की जो भावनाएं हैं एकेडमी के प्रति मित्रों मैं उनका पूरी तरह से सम्मान करता हूं, और नो डाउट आप जिस भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं और अपने आने वाले बैच के प्रति जो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं उसके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। आइए दोस्तों अब हम न्यूज के बारे में देखते हैं। आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी। मित्रों सच पूछे तो न्यूज में ऐसी कोई विशेष बात मुझे लगी नहीं जिसको लेकर के हम आज बातचीत कर सकें, लेकिन बातचीत तो करनी ही है, अपने इस वक्त का उपयोग करना है और बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करना है। तो मैंने सोचा है कि आज मैं आपसे क्रोनी कैपिटलिज्म पर बात करूंगा। क्रोनी कैपिटलिज्म, और ये शब्द आपको काफी समय समय पर अखबारों में पढ़ने को मिलता होगा, क्रोनी कैपिटलिज्म। मित्रों मैंने यह विषय क्यों चुना है, दरअसल इस विषय को चुनने के पीछे जो कारण रहा है वो बैंक घोटाला। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बैंकों के अंदर क्या चल रहा है वो हमारे सामने आ रहा है और पूरा देश इसे देखकर दंग है। ऐसा नहीं है कि बैंकों का घोटाला पहली बार हुआ है, लेकिन सवाल यह है, हमारे लिए सबसे चिंता की बात यह है कि अगर पहली बार होता तो शायद उतनी चिंता की बात नहीं होती कि भाई ठीक है शायद हम फूल प्रूफ सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। अगर ये कई बार के बाद अब फिर से हो रहा है तो चिंता इसलिए बढ़ जाती है कि जो इससे पहले जो बैंक घोटाले हुए हैं उसमें क्या किया गया, क्या हम अपने सिस्टम को फूल प्रूफ नहीं बना पाए या अधिकतम रूप में उसे हम ठोस नहीं बना पाए। क्योंकि लगातार आप देखिए हर्षद मेहता का आपने नाम सुना होगा, उस शेयर मार्केट का बहुत बड़ा घोटाला हुआ, फिर पारेख का घोटाला हुआ, हमेशा घोटाले हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय बैंकों में हुए हैं, यानी कि सरकारी बैंकों में हुए हैं। इस तरह के घोटालों की खबर आपको प्राइवेट बैंक्स में नहीं मिलेंगे। और एक मजेदार बात देखिए, मजेदार बात इसमें यह है मित्रों कि ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो पूंजीपति हैं, जो जिनके नाम हम बैंक घोटालों में देख रहे हैं पढ़ रहे हैं, इनके खातों के बारे में आप जाकर के विवरण लीजिएगा तो पता लगेगा कि इनके जो अपने खाते हैं वो प्राइवेट बैंक में चलते हैं, ज्यादातर वो प्राइवेट बैंक वालों से लेन देन करते हैं क्योंकि वहां उनकी थोड़ी सी अलग से अहमियत हो जाती है, लेकिन जब इनको लोन लेना होता है तो सरकारी बैंकों में आते हैं। सोचा जाना चाहिए कि ऐसा आखिर में क्यों होता है, क्योंकि इनको लगता है शायद कि सरकारी बैंक को मैनेज करना आसान है। तो मित्रों जब आप सरकारी बैंक को मैनेज करना आसान है कहते हैं तो ये क्या है मित्रों, यही है क्रोनी कैपिटलिज्म। इसीलिए मैंने सोचा कि बैंकों के इस घोटाले के बहाने हम लोग थोड़ा सा क्रोनी कैपिटलिज्म पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बहुत अधिक चर्चा में भी है, और सच पूछे तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। मित्रों, ये जो क्रोनी शब्द है, बेसिकली इसको आप कह लीजिए दोस्ती, दोस्ती याराना। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब है याराना पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब आप जानते हैं, पूंजीवाद जहां पर व्यापार करने की पूरी तरह से छूट है, जहां प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है वो अलाउ है, आप आइए व्यापार कीजिए, पैसा कमाइए। लेकिन पैसा कमाइए का अर्थ है कि जो किसी भी राष्ट्र के जो कानून हैं उन कानूनों की सीमा में रहते हुए, उनका पालन करते हुए आप जितना भी पैसा कमाना चाहते हैं आप कमाइए, उसके बकायदे टैक्स दे दीजिए, आपको इस बात की छूट है। दूसरी जो व्यवस्था है हम आप जानते हैं, समाजवादी व्यवस्था और या साम्यवादी व्यवस्था, वहां आपको इस तरह की छूट नहीं होती है। समाजवाद में थोड़ी सी ज्यादा छूट रहती, साम्यवाद में बिल्कुल छूट नहीं रहती, वहां प्राइवेट प्रॉपर्टी का अस्तित्व ही नहीं होता है। तो अब ऐसी व्यवस्था तो ज्यादातर खत्म ही हो गई है, समाजवाद जरूर चल रहा है। तो मित्रों, ये जो पूंजीवाद, देखिए कि क्रोनी के साथ कैपिटलिज्म शब्द लगा हुआ है, क्रोनी के साथ सोशलिज्म शब्द नहीं लगा हुआ है, आपके क्रोनी के साथ आपके कम्युनिज्म शब्द नहीं लगा हुआ है, कैपिटलिज्म शब्द लगा हुआ है। इसका मतलब कुछ इस तरह से निकलता है कि ये जो दोस्ती है, इस तरह की दोस्ती शायद पूंजीवादी व्यवस्था में ही संभव है, समाजवादी व्यवस्था में शायद उतना संभव न हो। जब हम भारत में क्रोनिक कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो फिर से देखिए हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हमने तो समाजवादी समाज की स्थापना की बात की है, तो भारत में ये क्रोनिक कैपिटलिज्म कैसे आ गया? भारत में तो फिर कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए क्योंकि हम तो समाजवादी हैं। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है, क्योंकि खासकर 1990 के बाद से, जब से उदारीकरण का दौर शुरू हुआ है, सच पूछिए तो समाजवादी व्यवस्था भी अपने आप को ओपन कर रही है, यहां तक कम्युनिस्ट जो व्यवस्था है जैसे चाइना वगैरह की, वो अपने को ओपन कर रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर रही है, अपने आर्थिक दर को, वृद्धि की दर को बढ़ाना चाह रही है। तो ओपन अब जैसे जैसे कर रही है, तो बट नेचुरल है कि अब ये जो समाजवादी आर्थिक व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तित हो रही है, राइट? अब जब पूंजीवादी व्यवस्था में देखी परिवर्तित होती है, तो फिर क्या होता है? मित्रों, ये जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है, ये केवल भारत की समस्या नहीं है, ये सच पूछिए तो ज्यादातर डेवलपिंग कंट्री की समस्या है। ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड कंट्री में नहीं है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री में इसका परसेंटेज बहुत कम है, यह डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा है। डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि वहां इकोनॉमिक ग्रोथ की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। डेवलपिंग कंट्री को अभी ढेर सारी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है, उनको अपने यहां इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है, उनके यहां अभी पूंजी की कमी है तो कैपिटल भी, उसका भी निर्माण करना है। तो बट नेचुरल है कि यहां जितनी ज्यादा इकोनॉमी एक्टिविटीज की गुंजाइश है, दूसरी देशों में जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं वहां तो गुंजाइश नहीं रह गई है। इसीलिए क्रोनिक कैपिटलिज्म ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में मतलब पाया जाता ही है कह लीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता, कैपिटलिज्म आपको थोड़े से समझ में आ गया होगा। अब जब हम क्रोनी की बात करते हैं, दोस्ती की बात करते हैं, तो ये किन के बीच की दोस्ती है? दोस्ती तो एक अच्छी चीज होती है, देखिए मित्रता तो एक अच्छी चीज है, लेकिन जब हम क्रोनिक कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव शब्द नहीं है, ये बेसिकली निगेटिव टर्म में यूज होता है, यह नकारात्मक शब्द है। यह एक ऐसी दोस्ती है जो गलत कामों के लिए है, अच्छे कामों के लिए नहीं। तो यह दोस्ती किनके बीच में है? मित्रों, ज्यादातर यह माना जाता है सामान्यतया कि यह जो दोस्ती है, यह पॉलिटिशियंस और आपके जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन में आप सभी ले लीजिए, हर तरह के बिजनेस, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं इसमें और दूसरे वर्ग के लोग भी हैं जो बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं, उनके बीच की दोस्ती है। इसको आप कह लीजिए दोस्ती को भी, क्या आप एक नेक्सस कह लीजिए, एक गठबंधन है पॉलिटिशियन के बीच में और पूंजीपतियों के बीच में। अब होता क्या है कि सरकार के हाथ में देखिए सारी शक्तियां होती, आर्थिक नीतियां वही तैयार करती, हर साल का बजट वही तैयार करती है। सरकार के हाथ में क्या नहीं है? पूरे के पूरे नेचुरल रिसोर्सेस सरकार के हाथ में है, वो चाहे जिसको जिस चीज का भी ठेका दे दे, जैसे माइनिंग नेचुरल रिसोर्सेज है, अब सरकार माइनिंग का ठेका जिसको देना चाहती है ऐसे तौर तरीके निकाल करके माइनिंग का ठेका दे दे। 2G स्पेक्ट्रम को आप देखते हैं, वो भी तो नेचुरल रिसोर्स ही था, उसका किसी को भी ठेका दे दिया जाए। क्योंकि कंट्री में अभी डेवलपिंग स्टेज पर है, तो दुनिया भर के डेवलपमेंट के काम होने, सड़कें बननी है, बिल्डिंग बननी है, पुल बनने हैं, एयरपोर्ट बनने हैं, पोर्ट बनने, कितनी सारी चीजें बननी है। यानी कि पब्लिक वर्क की ठेकेदारी भी आप अपने लोगों को दे दीजिए, किसी को भी दे दीजिए। लाइसेंस की अधिकार सरकार के हाथ में है, किसको किस चीज का लाइसेंस देती है। सरकार के हाथ में टैक्सेस बढ़ाना और घटाना है कि वो क्या टैक्स लगाती है किस वस्तु पर, और उस टैक्स के आधार पर ही उनका जो बिजनेस है, जो प्रोडक्ट है, वो फ्लरिश करेगा नहीं करेगा। तो सरकार तो बहुत शक्तिमान होती, शक्तिशाली होती है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार के पास वो ताकत होती है, वो किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, राइट? तो अब ये इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेंगे? देखिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके पास दो तरीके हैं। पहला तो यह है कि वो साफ सुथरे तरीके से आए, काम करें और ग्रो करें, आगे बढ़े। तो उसमें क्या होगा, मार्केट में कंपटीशन होगा, नो डाउट। मार्केट में अगर इकोनॉमिक में कंपटीशन होता है तो वो हमेशा अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जहां देखिए कंपटीशन होगा, बट नेचुरल है कि वहां वस्तुओं की कीमत कम होती चली जाएगी, क्योंकि कंपटीशन में लोग अपनी चीजों की कीमत कम करते चले जाएंगे, क्वालिटी भी सुधारेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक उनको पसंद कर सके। क्वालिटी सुधारने के लिए, नई नई चीजों को प्रोडक्ट करने के लिए, तैयार करने के लिए, वो इनोवेशन भी करेंगे कि यार कैसे नई नई चीजें खोज की जाए, इसमें और क्या R&D की जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए, ताकि हम और अच्छी कोई चीज ला सके। तो जहां कॉम्पिटिशन होगा या चीजें साफ सुथरे तरीके से होंगी, वहां ये सारी चीजें भी होंगी। लेकिन नेक्सस क्या करता है, क्रोनिक कैपिटलिज्म क्या करता है, इन सारी चीजों का गला घोंट देता है। कैसे गला घोंटता है कि ठीक है, एक पूंजीपति है या कई लोग, कई पूंजीपति हैं, पॉलिटिशियन के साथ बात कर ली, और पॉलिटिशियन के उनके चाहे वो पॉलिटिकल फंड की बात कह लीजिए, चाहे आप उनको पर्सनली कह लीजिए, या अब भारत में तो अब ये भी बहुत कुछ देखा गया है, धीरे धीरे वो चीजें रिवील हो रही है कि बकायदे पॉलिटिशियंस उनके बिजनेस में पार्टनर बन जाते हैं, बकायदे पार्टनर बन जाते हैं, साइलेंट पार्टनर बने हुए हैं, ऑन पेपर नहीं, साइलेंट पार्टनर बने हुए हैं, कि पूंजी नहीं लगा रहे हैं, वो सपोर्ट दे रहे हैं, सरकार का सपोर्ट, कानून का सपोर्ट, नीतियों का सपोर्ट। और ये बहुत बड़ी बात होती है, छोटी मोटी बात नहीं होती, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी बात होती है। तो ये बकायदे इस तरह से सपोर्ट देते रहते हैं और पूंजीपति फ्लरिश करते चले जाते हैं। तो अब उनको किसी कॉम्पिटिशन की जरूरत नहीं है, किसी इनोवेशन की जरूरत नहीं है, किसी क्वालिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीतियों के आधार पर ही वो ग्रो करते चले जाएंगे। आप देखिए कि पिछले 20-25 सालों में लोग कितनी तेजी से, जो उच्च वर्ग है, जिनके पास पैसा है, कितनी तेजी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। मतलब 2016 में ही आपको एक आंकड़ा मिला 2017 का, कि सोच करके देखिए कि जो टोटल भारत ने कैपिटल तैयार की, जो जनरेट हुई, उसका 73% केवल 1% लोगों के पास चला गया। तो आखिर वो ऐसी कौन सी चीज है, क्या मैकेनिज्म है? तो दोस्तों, ये दोनों का नेक्सस है, लेकिन इसमें एक नेक्सस, इस नेक्सस में एक वर्ग और शामिल हो जाता है भारत के संदर्भ में, और मित्रों वह वर्ग है ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही वर्ग। क्योंकि देखिए, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था अभी उतनी लोकतांत्रिक नहीं हुई है। अब कई बार हमारे जो लीडर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनको ये कहते हुए सुनते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे कि ये ब्यूरोक्रेट्स कुछ नहीं करने दे रहे हैं, नौकरशाही विकास की सबसे बड़ी बाधा बनी, इस तरह की बातें आप सुनते होंगे। इसका मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी के हाथ में अभी बहुत कुछ है। तो जब जिसके पास अधिकार होगा, वो फिर जब देख, मतलब ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो हमारे यहां जो नेक्सस बना हुआ है, और इसके लिए बकायदे जब अध्ययन हुआ तो ओपनली ये कहा गया कि भारत में जो ये क्रोनिक कैपिटलिज्म है, उसके तीन वर्ग हैं, नो डाउट पॉलिटिशियन फर्स्ट, दूसरा बिजनेसमैन, और तीसरा जो है वो ब्यूरोक्रेट्स है। जब ये तीनों मिल जाते हैं, तो अब आप कल्पना करके देखिए कि पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमी का जो स्वरूप होगा पूरा, वो किस तरीके का होगा। वहां वैधानिकता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, रूल्स रेगुलेशंस कानून का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, सरकारी खजाने में किसी चीज की वजह से कितना पैसा आ रहा है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, चीजें जो बन रही हैं, तैयार हो रही हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अर्थ केवल इस बात का है कि ये तीनों मिलकर के अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, और इसे आप कह लीजिए एक तरह का अलग किस्म का ये इजी ऑफ डूइंग बिजनेस है। क्योंकि कभी कभी ये बातें आपको पढ़ने में आती होंगी कि आप बाहर जाइए बात कीजिए, तो बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट इस बात को कहते हैं कि भारत में इंडस्ट्री लगाना आसान है, अब मैं रूल्स रेगुलेशन कानून की बात नहीं कह रहा हूं, वो इस रूप में कहते हैं आसान है क्योंकि वहां आप बड़े आराम से कानून वगैरह को अपने हिसाब से ढलवा सकते हैं। मित्रों यह भी एक क्रोनिक कैपिटलिज्म का ही रूप है, कानून को ढलवा सकते हैं का इसका मतलब है कि आप बदलवा सकते हैं। आप कानून को बदलवाएंगे कैसे, ऐसे तो बदल नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक संगठ एक गठबंधन सा कह लीजिए, एक अपवित्र गठबंधन सा तैयार हमारी सोसाइटी में हो गया है और ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में, हांगकांग वगैरह में, रशिया में ये तो और भी बुरी स्थिति में है। इसका भी इंडेक्स बकायदे बना हुआ, रुचिर शर्मा जो इकोनॉमिस्ट है और मॉर्गन स्टैनले में काम करते हैं इकोनॉमिक्स पर, उनकी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं और जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में मैंने उनको सुना भी है, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन है। उन्होंने फिर ये क्रोनिक कैपिटलिज्म का इंडेक्स तैयार किया था और उस इंडेक्स के तहत भारत अभी 9वें स्थान पर है, हांगकांग पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर रशिया है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है ये एक ऐसी बुराई है जो सही मायने में सत्ता और पूंजी से जुड़ी हुई है, जहां सत्ता है वहां करप्शन है, करप्शन का ही एक दूसरा रूप आपके क्रोनिक कैपिटलिज्म है, लेकिन इस तरह का नहीं मित्र। क्रोनिक कैपिटलिज्म का जो करप्शन है वो बिल्कुल अलग, इसे आप भ्रष्टाचार मत मान करके चलिएगा। यहां मैं थोड़ा सा आपको एक बात और कह दूं कि भाई भतीजावाद शब्द भी चलता है, नेपोटिज्म जिसे हम कहते हैं, याद रखिए कि भाई भतीजावाद भी क्रोनिक कैपिटलिज्म से अलग है। देखिए भाई भतीजावाद क्या होता है कि कोई पॉलिटिशियन है वो अपने ही रिश्तेदार संबंधियों को इस तरह का की मदद दे, है ना, ब्यूरोक्रेट्स अपने भाई भतीजे संबंधियों को इस तरह का दे, लेकिन क्रोनिक कैपिटलिज्म का संबंध भाई भतीजों से नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो उनकी बातों उनकी टर्म्स एंड कंडीशन से सहमत हो, या दूसरा कोई व्यक्ति जब प्रस्ताव लेकर के आता है और उनके टर्म्स एंड कंडीशन पर ये लोग सहमत हो तो वो बात बन जाती है। तो भाई भतीजावाद और जो याराना पूंजीवाद है इनमें थोड़ा सा यह फर्क है। तो मित्रों थोड़ी सी बातें मैंने क्रोनिक कैपिटलिज्म के बारे में आपके आपसे की हैं और मुझे लगता है कि शायद यह जो टॉपिक है आपके दिमाग में और क्लियर हुआ होगा। अफ्रीका में भी ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो मित्रों अब मैं इस विषय को यहीं समाप्त करता हूं और जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, सुभाष कुमार ठाकुर, उषा नैन हरियाणा से, रणवीर सिंह, आयुषी बिसेन बालाघाट मध्य प्रदेश से, मनीष कुमार पंसेरिया कटनी मध्य प्रदेश से, बबीता सोनी, डॉ सुमन बंसल भिवानी हरियाणा से, हरप्रीत कौर मोगा पंजाब से और अजय कुमार सागर से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।